आकाशवाणी है। अब आप अरुण कुमार से समाचार सुनिए। नागर विमानन महानिदेशालय ने भारतीय विमान बेड़े में मौजूद 34 बोइंग 787 विमानों की विस्तारित जांच के आदेश दिए हैं। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि इनमें से 8 विमानों का तत्काल निरीक्षण किया जा चुका है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए श्री नायडू ने कहा कि घटना की जांच के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है। गृह सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
We have circulated the order of the high-level committee which is going to investigate this crash. The Home Secretary is going to be the chairman of the committee, Secretary Ministry of Civil Aviation, additional secretary from MHA, one representative from the state of Gujarat, representative from State Disaster Response Authority, Government of Gujarat, Police Commissioner Ahmedabad, DG Inspection and Safety from the Indian Air Force, DG BCAS, DG DGCA, Special Director from IB and Director from the Directorate of Forensic Sciences Services.
श्री नायडू ने कहा कि दुर्घटना के तुरंत बाद विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को सक्रिय कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जांच ब्यूरो ने विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। इस बीच गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि एयर इंडिया विमान दुर्घटना के मृतकों में से 19 लोगों के शवों की डीएनए की जांच के जरिए पहचान कर ली गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्री ने कहा कि राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की टीम और अधिक डीएनए नमूनों का मिलान करने के लिए रात भर काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता बनी हुई है और भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने की किसी भी कोशिश का निर्णायक कार्रवाई से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए सरकार के दृढ़ रुख को रेखांकित किया। श्री शाह मध्य प्रदेश के सुंदर हिल स्टेशन पंचमढ़ी में भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल फ्रांस की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के समापन पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को समर्थन देने के लिए फ्रांस की सराहना की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अपने फ्रांसीसी समकक्ष जीन नोएल बैरोट के साथ बैठकें की। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि दोनों पक्ष रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष और असैन्य परमाणु सहयोग जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के बाद कूटनीतिक पहल के तहत 7 संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के वैश्विक मंच पर भारत की आवाज को सर्वसम्मति से प्रतिध्वनित किया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि इस कूटनीतिक पहल के माध्यम से भारत आतंकवाद और अपने नागरिकों को आतंकवाद से बचाने के अपने अधिकार को वैश्विक मंचों पर व्यक्त करने में सक्षम हुआ है।
हम लोग की मुलाकात बहुत विशेष प्रकार के लोगों से हुई, मंत्रियों, विदेश मंत्री, फॉरेन अफेयर्स कमेटी, डिफेंस अफेयर्स कमेटी, इंडिया कॉकस, इन लोगों से मिले, थिंक टैंक से मिले। सभी देशों ने एक स्वर से पहलगाम के इस बर्बरता की जबरदस्त निंदा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिलेस के निमंत्रण पर साइप्रस पहुंचेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 2 दशक में साइप्रस की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 16 जून को कनाडा जाएंगे। श्रीलंका सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BKGM लासांथा रोड्रिगो ने दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। अधिकारियों ने बताया कि दोनों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने तथा सैन्य संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसराइल और ईरान ने कल एक दूसरे पर मिसाइलों से हमले किए। ईरानी मिसाइलों ने प्रमुख इजरायली शहरों को निशाना बनाया, जबकि इसराइल ने तेहरान में सैन्य प्रतिष्ठानों पर नए हमले किए। इस टकराव ने मध्य पूर्व को खतरनाक क्षेत्र में बदल दिया है। मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच आज होने वाले परमाणु वार्ता के 6 दौर को रद्द कर दिया गया है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने इसकी पुष्टि की। लंदन में भारतीय महिला हॉकी टीम अपने अगले FIH प्रो लीग मैच में फिर से ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी। कल हुए FIH प्रो लीग मुकाबले में टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। प्रतियोगिता में अब 7 मैच शेष बचे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।